माफ कर दो, मुझे तुमसे नाराज नहीं होना चाहिए था। माँ को अपने बच्चों की गलती पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। तुमने गलती की, लेकिन मुझे इसे इतना सख्त नहीं लेना चाहिए था। मुझे तुम्हें इस घर को बेचने की इजाजत दे देनी चाहिए थी।
आप खुद को मलामत मत करें, बस इन्हें माफ कर दें, इनके लिए यही काफी होगा।
मैंने माफ किया, मेरे खुदा ने माफ किया। भला कौन माँ होगी जो अपने बच्चों को माफ ना करे। खुदाया हम दोनों की खताओं को बख्श दे। खुदाया मेरे बच्चे को शिफा अता फरमा और मुझे भी माफ कर दे। खुदा बेहतर जानता है मैंने उसे दिल से बद्दुआ नहीं दी थी। वो खूब जानता है मेरे दिल से बद्दुआ नहीं दी। पालित गिरे उस जुबान पर कि जिससे मैंने कहा था कि तुझे मौत आ जाए। खुदाया ओ मेरे खुदा, इस शबे कद्र के सदके में तुझे अपनी इज्जत और जलाल का वास्ता, मेरे बच्चे को शिफा अता कर दे। मेरे बच्चे को शिफा अता कर दे।
अस्तग़फ़िरुका बिस्मिका या
Yeah.
आपने इन्हें सिर्फ चंद घंटों के लिए ले जाने की इजाजत ली थी। कल रात जो आप गए तो लौटे ही नहीं।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, गलती मिस शफी की है जिन्होंने वादा किया और फिर से पूरा नहीं किया।
मिसेस मौसवी नाराज मत हूँ, असल में खुशगवार वाकया हो गया था।
कैसा वाकया?
मिसेस मौसवी, शहरयार ठीक हो गया है।
शहरयार?
जी मेरा बेटा, खुदा का लाख लाख शुक्र है मेरा बच्चा ठीक हो गया।
वो तो ठीक है, लेकिन ये जवाब नहीं बनता कि मैं इन पर एतराज ना करूं।
माफी चाहती हूं।
मुझे अपने बेटे के पास रहकर ही उसके लिए दुआ करनी थी।
माँ की दुआ का कोई नेबुल बदल नहीं।
मुझे बहुत खुशी है, लेकिन आज आपको इस तरह यहाँ से जाने की इजाज़त हरगिज नहीं दे सकती। हमारे यहाँ के कुछ असूल और कवानीन हैं। आप कम से कम रابطہ करके इत्तला तो दे सकती थी ना?
आप ठीक कह रही हैं। मैं भी माजरा चाहता हूँ, लेकिन यकीन जानिए सब अचानक और गैर मुतवक हुआ था।
प्लीज हमें माफ कर दीजिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें कम से कम आपसे पूछ लेना चाहिए था, ये मेरी गलती है।
कल रात आपने आराम भी नहीं किया होगा, अपनी दवाइयाँ भी नहीं खाई होंगी। अब आप आराम करें।
मैं खुद इन्हें इनके कमरे तक ले जाती हूँ। बहुत शुक्रिया।
अच्छा, खुदा हाफिज।
कल रात आपने मेरी काफी मदद की, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ।
यानी अब ये लोग मुझे मेरे बेटे से मिलने के लिए नहीं जाने देंगे?
कुछ दिन आपको इंतजार करना होगा ताकि आपके बेटे की तबीयत बेहतर हो जाए। आप यही रहकर दुआ कीजिए, मैं रोजाना आपको फोन करके उनकी खैरियत बताती रहूँगी, बल्कि मैं आपसे मिलने भी आ जाया करूँगी। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा।
बेटी मुझे माफ कर देना, मैंने इस अरसे में तुम्हें बहुत तकलीफ दी है।
ये कैसी बातें कर रही हैं? आपने कब मुझे तकलीफ दी?
क्यों नहीं बेटा, मैंने तुम्हारा वक्त बर्बाद किया।
बिल्कुल भी नहीं, अब आप इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगी।
शुक्रिया,
अब आप आराम कीजिए।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
शुक्रिया। खुदाया तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
किन सोचों में घूमो बेटा, ये लो चाय पियो। कल मैं खुद परवाना के घर जाऊंगी और उससे बात करूंगी, फिर सब कुछ मालूम हो जाएगा।
जी फरमाइए, मैं ही हूँ। आप जनाब शफी? अरे कामरान साहब। जी
क्या क्या हुआ,
आपको कैसे पता चला? ठीक है, मैं बस अभी आता हूँ। खुदा हाफिज। मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। खुदा हाफिज।
कहाँ जा रहे हो सरोश? सरोश इतनी रात गई कहाँ जा रहे हो?
अस्सलामुअलैकुम। हाँ क्या हुआ?
कल सुबह सादिक का वक्त था, मैंने देखा चंदर से भागती हुई और कहने लगी मुबारक हो आपके पेशेंट को होश आ गया है।
अच्छा मगर आपको कैसे पता चला?
क्योंकि मैं भी यहीं था बहनूश के साथ। मिसेस सलीम ज़ादा को हम ही यहाँ लेकर आए थे, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ किसी और वजह से बुलाया है।
किस वजह से?
मैं चाहता हूँ कि पहले तुम मर्दों वाली जबान दो कि मेरी शर्त पूरी हो जाने तक तुम बहनों से कोई बात नहीं करोगे।
कैसी शर्त?
मंजूर है?
ठीक है मंजूर है।
मैं यहाँ इसलिए रुका हुआ था कि पहले सलीम ज़ादा साहब से खुद बात करूँ। अगर सलीम ज़ादा साहब को होश आ गया और उन्होंने तुम दोनों को पहचान लिया तब तो ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि तुम लोगों की बातों का यकीन करके तुम लोगों को तुम्हारे हाल पर छोड़ दूंगा। लेकिन अगर उन्होंने नहीं पहचाना, लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि मैं तुम दोनों से दूसरी जबान में बात करूंगा।
मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मिस शफी को इस बात की खबर नहीं होगी, लेकिन इस बात की कि उन्हें होश आ जाने के बाद सब कुछ याद भी रहता है इसकी कोई गारंटी नहीं।
वो फिर तुम्हारी अपनी किस्मत होगी, बिल्कुल जैसे मेरी बदकिस्मती थी जब तुम्हारी और बहनोश की एक दूसरे से मुलाकात हुई थी। मुमकिन है इस दफा किस्मत तुम्हारा साथ ना दे।
ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। अब उनकी हालत कैसी है?
बोलने में जरा मुश्किल है अभी, लेकिन डॉक्टर जब उनसे बात कर रहे थे तो वो अपनी आंखों के इशारे से जवाब देने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल डॉक्टर उनका मुआयना कर रहे हैं।
अच्छा डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं कि उन्हें बात करने में कितना वक्त लगेगा? ठीक है फिर मैं चलता हूँ, मामा मेरा इंतजार कर रही होंगी। खुदा हाफिज़।
अच्छा तो आपने शेयर्स की मुंतकली के तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए हैं करामती साहब?
जी मैंने तो नहीं, अलबत्ता मेरे एक कुलीग ने आकर जमा करवा दिया।
क्या नाम था उनका?
जनाबे फरामर्ज अब्दली।
फरामर्ज अब्दली,
एक साहब जो लंबे चौड़े सेहतमंद से, चेहरा गोल सा, उनकी दाढ़ी थी इस तरह से।
अब्दली नाम के एक साहब आए तो थे तकरीबन एक हफ्ते पहले, आखिरी वक्त में कुछ डॉक्यूमेंट्स लाए थे लेकिन फिर वो लेने ही नहीं है।
इनके डॉक्यूमेंट चेक कर लें ताकि कानूनी कार्रवाई में कोई मसला ना हो।
जी बेहतर।
कल सुबह आप अपने शादी कार्ड और उसकी फोटोकॉपी और खरीदारों के साथ तशरीफ ले आइएगा।
क्या ये आज पॉसिबल नहीं कि आज ही फाइल आगे बढ़ा दी जाए?
कोई फोटोकॉपी तो करनी नहीं है जनाब, कानूनी दस्तावेजात तैयार करने हैं, आपके और खरीदारों के डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, और फिर वैसे भी दोपहर के 2 बज रहे हैं, इस वक्त रजिस्ट्रार का ऑफिस बंद हो चुका होगा
और इंक्वायरी ऑफिस भी अब 2 रोज बाद खुलेगा।
अब अगले हफ्ते ही आइएगा। ये रहिए अपने पास रखें, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के वक्त ये अपने हमरा जरूर लेकर आइएगा।
चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया,
हमारा फर्ज है।
खुदा
जी जरूर, खुदा हाफिज।
माफ कीजिएगा मुझे परवाना से मिलना था, मैं कल भी यहाँ पर आई थी, लगता है आज भी वो नहीं है या उनकी डोरबेल खराब है।
परवाना साहिबा वो तो कहीं गई हुई है, पता नहीं कब लौटेंगी।
गई हुई है?
जी गई हुई है।
अच्छा आपको एक जहमत देनी थी, अगर मुमकिन हो तो 1 मिनट के लिए दरवाजे पर आएंगी आप? मुझे कुछ देना है उनके लिए ताकि जब वो आए तो आप उन्हें दे दें।
ठीक है आप 1 मिनट रुके, मैं अभी आती हूँ।
शुक्रिया।
मेरे ख्याल में कामरान मुझसे कुछ नाराज है, खुसूसन थाने वाले वाकये के बाद से।
आप कामरान के रवैयों और बातों को ज्यादा सीरियस मत लें, देखना उसे बाद में खुद ही समझ आ जाएगी।
ये बताइए बिलाआखिर आपने शादी का फैसला कर लिया है?
पता नहीं मुझे। आप बिल्कुल परेशान मत हो।
परेशान नहीं तो मिला आखिर मुझे नीमा और परवानी का पता चल गया।
बहुत खुशी हुई, वाकई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इनसे बात हुई आपकी?
नहीं, नहीं कर सका और शायद अब कभी कर भी न सकूं।
क्यों, क्या हुआ?
परवाना ने दूसरी शादी कर ली है।
क्या हुआ?
कुछ नहीं, बस यूं ही कुछ परेशान हूं मैं।
नर्स आ रही है, शायद उससे हमसे कुछ काम है। सलीमजादा के अजीजों का पूछ रही।
आप लोग सलीमजादा साहब के साथ हैं?
जी जी, फरमाइए।
सिर्फ कोई एक शख्स मरीज से मिल सकता है और कोई एक उनके वाजिबात की अदायगी के लिए काउंटर पर चला जाए। अब तक हॉस्पिटल ही उनका इलाज कर रहा था, उनकी तरफ काफी न्यूज़ है।
मैं काउंटर पर जा रहा हूँ।
जैसे आपकी मर्जी।
वहीं से चला जाऊंगा। खुदा हाफिज़।
उनसे मिलने के लिए मैं चलूं?
जैसे आपकी मर्जी, आइए।
आप एक महीने से कोमे में थे, कुछ याद है आपको? कुछ याद है
माँ?
आपकी वालदा 2 दिन पहले आप ही के पास थी। वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपको कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आया आपको? कुछ याद आ रहा है आपको? इस तस्वीर को पहचानते हैं आप?
ये सवाल आप बाद में पूछ लीजिएगा, इनकी तबीयत ठीक नहीं है।
ये मेरी मंगेतर की तस्वीर है, बहनो शफीई। आप जानते हैं? आप बहनोश को पहचानते हैं? जवाब दें, यह बहुत जरूरी है।
आप बाहर जाइए प्लीज, आप बाहर जाइए। मैं आपको मजीद इस तरह मरीज को परेशान करने की इजाजत नहीं दे सकती। जाइए जाइए जनाब, प्लीज बाहर आइए।
सुनो यार, मुझे तुमसे एक जरूरी काम था। मैंने परवाना को ढूंढ लिया है।
क्या, परवाना को ढूंढ लिया है?
कब? वो तो मुल्क से बाहर चली गई थी।
अब उनसे बात हुई है क्या?
नहीं नहीं, फिलहाल उससे बात नहीं हो सकी,
लेकिन इतना पता चला है कि परवाना ने दूसरी शादी कर ली है। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ?
मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर इसके शोहर का पता लगाओ। अगर वही लड़का अमीर जिससे 2 साल पहले शादी करना चाहती थी
तो समझो मेरा शक सही था, तो फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं।
लेकिन अगर वो ना हो, उसका
शोहर कोई और हो, तो हर सूरत उससे मिलो
और उससे ये कहो कि सरोज को आपसे बहुत जरूरी बात करनी है।
मसूद किसी को भी,
हत्या के मामा को भी इसका पता ना चले, किसी को भी कुछ मत बताना।
समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ?
यार तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ।
मसूद यार, ये मेरी और मेरे खानदान की इज्जत का सवाल, तुम समझ रहे हो ना?
कहा ना तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ।
चलो ठीक है।
अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना? अब हमें मिसेस सलीम ज़ादा को ले आना चाहिए ताकि वो अपने बेटे से मिल सके।
नहीं, मेरा ख्याल है बेहतर ये होगा कि हम अभी रुक जाएं। सलीम ज़ादा साहब की हालत जरा और बेहतर हो जाए और वो खुद चलकर अपनी माँ को देखने जाएं। इन तमाम मुश्किलात के पेश नज़र जो मिसेस सलीम ज़ादा को सैनिटोरियम से बाहर लाने में पेश आती हैं।
मैं मिसेस सलीम ज़ादा की वजह से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि अगर वो ठीक भी हो जाती हैं तो उनके माली हालात खराब। बेचारी उनकी माँ के पास जो भी जमा कुंजी थी वो उनके बेटे ने गाड़ी खरीदने में खर्च कर दी और बाकी के पैसे एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। गालिबन शेयर्स खरीदे थे और शेयर्स की कीमत में 5% कमी हो गई। अब रही उनकी गाड़ी, तो वो भी एक एक्सीडेंट की नजर हो गई। अब उनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची कि वो अपनी माँ के लिए कुछ कर सकें, और उस पर हॉस्पिटल के अब तक होने वाले अखराजात की जिम्मेदारी अलग है। अब किस बात की परेशानी है तुम्हें? ये कि अब तुम जान गए हो कि अरवाहों से मुतल्लक मेरी तमाम बातें बिल्कुल दुरुस्त थी, या फिर तुम्हारा दिल अपने फार्म्स की मछलियों के लिए उदास हो गया है? हाँ,
आप मिस नजफियान के ससुराल वालों को जानती हैं क्या?
मैं नहीं जानती, आपको उससे क्या ताल्लुक है?
मैं परवाना नजफियान साहिबा के फैमिली फ्रेंड्स में से हूँ, लेकिन उनके साबका शौहर के दोस्तों में से। अलबत्ता वो ये खुद भी जानती हैं कि मैं हमेशा उनका तरफदार रहा हूँ। इस वक्त भी एक बहुत अहम मसले के सिलसिले में उनकी खिदमत में हाजिर हुआ था।
जनाब, मैंने आपको कितनी बार बताया कि वो लोग गए हुए हैं, मुझे कुछ नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं और कब लौटेंगे। माफ कीजिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती।
क्यों नहीं? उन्हें कहिएगा कि मसूद राजी को फोन कर लें। देखिए, ये बहुत अहम मसला है और अगर आप भूल गई तो कोई भी नाखुशगवार वाकया रूनमा हो सकता है। हाँ, भूलिएगा मत प्लीज।
मेरे पास उनका कोई कांटेक्ट नंबर तो नहीं है, अलबत्ता अगर उन्होंने खुद कांटेक्ट किया या वो आ गई तो मैं जरूर उन्हें बता दूँ।
बहुत शुक्रिया, याद दहानी की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, मामला बहुत ही नाजुक है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
पता नहीं ये हकीकत है या ख्वाब।
आप जिंदा भी हैं और बहोश और हवास भी, बिल्कुल हमारी तरह। हम भी जब शुरू शुरू में होश में आए थे तो ऐसे ही लग रहा था जैसे कोई ख्वाब हो या बेहोशी का आलम।
अगर आप दोनों को ना देखता तो यकीन आ जाता मैं जिंदा हूँ।
लेकिन आप वाकई जिंदा हैं।
जानता हूँ। तो क्या वो डरावने ख्वाब, वो मंजर, वो सब हकीकत थे?
बिल्कुल वो सब हकीकत थी।
बाकी लोगों की क्या खबर? फिर उन्हें देखा? हमारे बाद फिर किससे बात की? हम दोबारा नजर आए?
तुम लोग फिर नजर नहीं आए, सिर्फ मिसेस हिकमत को देखा था। वो सख्त अजाब झेल रही थी मेरी आंखों के सामने, वो फरियाद और इल्तिजा कर रही थी, और फिर हर तरफ आग के शोले भड़क उठे, बिल्कुल पिघले हुए लावे की तरह, जहां जहां गिरता सब कुछ खाकस्तर कर डालता, सब कुछ, सब कुछ। तन्हा होना, तन्हा होना, ऐसे वहशतनाक हालात में तन्हा होना बहुत सख्त है, और जब इंसान गुनाहों में आलूदा भी हो, खुदा ही जानता है पैमान किस हाल में होगा।
पहले तो मैं समझती थी कि मौत का खौफ मरने के साथ ही खत्म हो जाता है, लेकिन जब मैंने मौत का खुद मुशाहिदा किया तब पता चला कि मुसीबतों की शुरुआत तो अब है। अब तक भी किस्मत ने हमारा साथ दिया था, हरचंद की ये छुटकारा जुज वक्ती ही क्यों ना हो। काश खुदा खुद हमारी किसी तरह मदद करे ताकि हम अपने गुनाहों की तलाफी कर सकें, कुछ इस तरह के फिर अगर हम मर जाएं तो दोबारा उस जगह ना जाएं।
रूहों से किए गए वादे का क्या हुआ? तुम लोगों ने क्या किया? इंजीनियर पैमान, मिसेज हिकमत।
मिसेज हिकमत ने अपनी मौत के मुतालिक कुछ नहीं बताया, यही कि वो किस तरह सीढ़ियों से गिर गई थी।
तो क्या तुम लोगों को नहीं मालूम? मिसेज हिकमत को उनकी बहू ने सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया था, यानी किसी को पता ही नहीं चला, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया।
कोई सबूत जो नहीं, कोई गवाह नहीं।
खैर, अब आप थोड़ा आराम कर लें, इंशाल्लाह जल्द से अदिया हो जाएंगे।
मेरी माँ, उनकी कुछ खबर मिली?
क्यों नहीं, मैंने उनसे इस बारे में बात की थी कि अगर हम सेनेटोरियम से इजाजत ले सके तो जरूर आपसे मिलने आएंगी।
सलीम ज़ादा साहब की बात अगर सही हो तब भी ये कोई ठोस सबूत नहीं है। अगर आप लोग ये बात करेंगे तो वो उल्टा आप लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर देंगे। वैसे भी मिसेज हिकमत को अब दफनाया जा चुका है, कब्र को दोबारा खोला भी नहीं जा सकता, वो भी एक लंबा प्रोसेस है।
और अगर हम ये साबित कर दें कि उनकी बहू का काम है तो फिर?
वो कैसे, उन्हें दफन हुए एक हफ्ता हो चुका है, फिर वैसे भी उन दोनों खबीसों ने उनका कोई एक आज़ा भी सालिम नहीं छोड़ा है जिसका पोस्टमार्टम किया जा सके।
हम कोई उनसे ये थोड़ी कहना चाह रहे हैं कि वो मिसेज हिकमत के गुर्दे या दिल का पोस्टमार्टम करें, हम तो बस ये चाहते हैं कि उनके सर पर लगने वाली चोट का एक बार फिर डीपली मुआयना किया जाए।
कामरान भी ठीक कह रहा है, आखिर वो लोग भी तो जाहिर कर रहे हैं ना कि जैसे वो मुखय्यर हजरात हैं।
तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम उन लोगों से जिनको सूद पर पैसा दिया गया था गवाही दिलवा सकते हैं।
फिर भी कोई सबूत नहीं है ये, क्योंकि होशंग और शिवा ये कह सकते हैं कि उनकी माँ कर्ज़े हसना के तौर पर पैसे दिया करती थी। कोई फायदा नहीं,
बिलाखिर इन बेचारी खातून के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा।
मैं तो राजी नहीं हूँ कि ऐसे इंसान के लिए कुछ किया जाए। मेरा तो ख्याल है कि उन्हें अजाब झेलने दिया जाए ताकि उन्हें पता चले ये दुनिया जजा और सजा से खाली नहीं।
हम ऐसा नहीं कर सकते, हम वादा कर चुके हैं।
आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता।
कौन है?
मैं हूं सरोज करामती, अगर मुमकिन हो तो चंद मिनट के लिए दरवाजे पर आ जाए।
दफा हो यहां से, दफा हो जाओ यहां से।
आखिर ये लोग हमसे चाहते क्या है? हाँ, लगता है इन लोगों को पुलिस के हवाले करना पड़ेगा।
खुद ही निपटो। कौन है?
मेरी बात गौर से सुनो, सलीम ज़ादा साहब को होश आ गया है
और उन्होंने इस हकीकत का इंकशाफ किया है कि आपकी वाइफ शिवा ने आपकी वालिदा को मारने के इरादे से सीढ़ियों से धक्का दिया था। सुना तुमने, तुम्हारी माँ का कत्ल हुआ है, वो भी तुम्हारी अपनी बीवी के हाथ।
ये पागल हो गया है, इन्हें बस बेकार की बातें बनाना आती हैं। तुम इन्हें पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देते? हाँ,
कोई फायदा नहीं, उन पर इसका कोई असर नहीं होने वाला, बेहतर है कि हम चलें। क्या भूल गए कि पिछली बार किस तरह से तुम्हारी दुर्गत बनाई थी? जो शख्स किसी एक का कत्ल कर सकता है वो दोबारा भी ऐसा कर सकता है।
कान खोलकर सुन लो, हमें तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी। हाँ बाबा, जाओ यहाँ से, छोड़ो हमारा पीछा, एक फूटी गाड़ी मिलने वाली नहीं है तुम लोगों को। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ।
माफ कीजिएगा मोहतरमा, आपको इन जालिमों से क्या काम आ पड़ा?
मैं लालची लोगों से तंग आ चुकी हूँ और क्रांति इन सबसे बदतर है।
बेहतर होगा हम लोग यहाँ से चले जाते हैं, या फिर हम ये घर बेचकर और तमाम रकम लेकर ईरान से निकल जाते हैं। जरा सोचो तो, हमें इन सबसे निजात मिल जाएगी, वहाँ हमें कोई परेशान करने वाला नहीं होगा। ठीक है,
किसी बात की परेशानी है?
किस बात की?
मसलन इस बात की के कहीं
क्या कहना चाहते हो?
अगर करामती साहब की बात सच हो गई,
यानी तुमने उसकी बात का यकीन कर लिया? पागल हो गए हो क्या? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? देखो तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो, तुम ऐसा मजाक कैसे कर सकते हो? हाँ,
जिस दिन मेरी माँ उन सीढ़ियों से गिरी थी तुम कहाँ थी? शाम 4:30 बजे।
क्या मतलब? देखो तुम मुझे अब गुस्सा दिला रहे हो।
सवाल का जवाब तो बस।
लेकिन क्या वाकई तुमने उनकी बातों पर यकीन कर लिया?
रमजान के दिनों में इन लोगों ने मेरे शोहर को जेल में डलवा दिया, उन्होंने मुझे और मेरे बच्चों को परेशान किया हुआ है। वो पैसों का इंतजाम कर रहे थे लेकिन उन्होंने मौका ही नहीं दिया, हमें तो बेसहारा कर दिया साहब।
चले खैर, अब रोए मत, रोने से तो कुछ हासिल नहीं होगा ना। आप सिर्फ दुआ करें कि खुदा इनके शर से हम सबको निजात दे।
आप उन्हें जानते हैं?
ज्यादा नहीं।
आपको खुदा का वास्ता, अगर आप इनके दोस्तों में से हैं, तो इनसे कहें कि हम इज्जतदार लोग हैं, अगर मेरे शोर को सजा हो गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे।
जी जरूर, आप बेफिक्र होकर घर जाइए।
बेहतर होगा कि आप अपने घर जाइए, क्योंकि इनके सामने रोने और गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं है।
भरोसा रखें, खुदा आपकी मदद करेगा।
कोई फायदा नहीं।
खुदा हाफिज़।
खुदा हाफिज़।
हम कुछ नहीं कर सकते, चले।
मैं किसी भी तरह ये रसीदें इन खबीसों के चुंगल से निकलवा कर रहूंगा।
आखिर क्या करना चाहते हैं आप? कहीं रसीदें चुराने का इरादा तो नहीं है आपका?
हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो ये भी कर गुजरूंगा। इस किस्म के लोगों से इन्हीं की जबान में बात करनी चाहिए।
कब से तुम्हारे लिए वो बुढ़िया इतनी अहमियत की हामिल हो गई? हाँ, जब चले हो माँ के हमदर्द बनने।
अच्छा,
हमारी माँ तो कत्ल किए जाने की बिलायत नहीं थी, वरना मैं ये भी कर गुजरती। अगर तुम्हारे लिए वो इतनी अहमियत रखती तो तुम कभी भी उसे छुटकारा पाने की कोशिश ना करते। लगता है जो बातें तुमने हॉस्टल में कही थी वो तुम भूल गए हो। बुढ़िया भिखारन
कहीं। अजीज़े मन, मेरी जान, मेरी जान, मेरे लिए भी वो कोई अहमियत नहीं रखती थी। तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम, उनका होना ना होना मेरे लिए बराबर है। मैं ये बस जानना चाहता हूँ कि तुमने ऐसा किया या नहीं। तुम उस रोज अपनी गाड़ी के लिए माँ से सूद पर पैसे लेने के लिए ये आना चाह रही थी ना? हाँ
हाँ, मैं उनसे पैसे लेना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि जो औरत अपने ऊपर एक दमड़ी खर्च नहीं करती, जो तुम पर और अपने बेटे पर खर्च नहीं करती, वो बुढ़िया मुझे क्या पैसे देगी। इसलिए मैं वहाँ से चली गई। मुझ में उस आदमी की बातें सुनने का हौसला अब नहीं है। देखो मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मेरा और दिमाग मत खराब करो। चलो, हाँ मैंने ही उन्हें मारा है, तुम कह रहे हो ना, तो मैंने ही उन्हें मारा है। हाँ मैंने ही उन्हें मारा है।
शिवा,
मैंने नहीं मारा, मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा। मेरे अल्लाह मैं क्या करूँ, मेरे अल्लाह मैं क्या करूँ, मेरे अल्लाह मैं क्या करूँ। सुनो, तुम्हारी माँ को मैंने नहीं कत्ल किया, तुम कह रहे हो ना मैंने मारा है। हाँ तो मैंने बहुत अच्छा किया है।
शिवा, शिवा देखना मैं तुम्हारा क्या असर करता हूँ, बस सब्र करो।